ये आकाशवाणी है। अब आप सिद्धार्थ सिंह से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाषा, साहित्य, कला और आध्यात्मिकता जैसे सांस्कृतिक स्तंभ किसी भी देश की पहचान है। उन्होंने कहा कि आज विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहे देश की जड़ें आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और स्वाभिमान से गहरी जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आज अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का उल्लेख किया। श्री मोदी ने विश्व से समस्याओं का समाधान युद्ध में ढूंढने की जगह भगवान बुद्ध की शांति के मार्ग की शिक्षाओं में ढूंढने की अपील की। श्री मोदी ने कहा कि भगवान बुद्ध की शिक्षा से प्रेरणा लेकर देश के विकास में सकारात्मक परिवर्तन होंगे। श्री मोदी ने पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के सरकार के निर्णय पर कहा कि भाषाएं केवल वार्तालाप का माध्यम नहीं है बल्कि सभ्यता और संस्कृति की आत्मा भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभिधम्म दिवस हमें दुनिया को बेहतर बनाने के लिए करुणा और सद्भावना के मूल मंत्र का संदेश देता है। प्रधानमंत्री ने अभिधम्म दिवस पर सभी को विशेष रूप से भगवान बुद्ध के अनुयायियों को शुभकामनाएं दी। भारतीय जनता पार्टी के नायब सिंह सैनी ने आज पंचकुला में दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। श्री नायब सिंह के साथ 13 विधायकों ने भी कैबिनेट और राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। झारखंड में आचार संहिता लागू होने के बाद राज्य में राजनीतिक दलों के होर्डिंग, पोस्टर और बैनर हटाने का काम शुरू हो गया है। नगर निगम को निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है। राज्य में विधानसभा चुनाव 13 और 20 नवंबर को दो चरणों में होंगे। महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में आज मलावी पहुंच गई हैं। किसी भारतीय राष्ट्रपति की मलावी की ये पहली यात्रा है। मलावी में राष्ट्रपति का भव्य स्वागत किया गया। मलावी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का द्विपक्षीय और शिष्टमंडल स्तरीय बैठकों तथा भारतीय समुदाय के साथ बातचीत का कार्यक्रम है। सर्वोच्च न्यायालय ने असम में अप्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने से संबंधित नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि असम समझौता अवैध शरणार्थियों की समस्या का राजनीतिक समाधान है। न्यायाधीश सूर्यकांत, MM सुंदरेश और मनोज मिश्रा ने अपने फैसले में कहा कि संसद के पास इस प्रावधान को लागू करने की विधायी क्षमता थी। धारा 6A को असम समझौते के बाद 1985 में नागरिकता अधिनियम में जोड़ा गया था। इसमें असम के लिए एक विशेष प्रावधान बनाया गया। इसके अंतर्गत 1 जनवरी 1966 से पहले बांग्लादेश से आए भारतीय मूल के लोगों को भारतीय नागरिक माना गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2024 का मसौदा देश में मजबूत और पारदर्शी खेल प्रशासन संरचना स्थापित करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है। डॉ मांडविया ने मसौदा विधेयक पर विचार विमर्श के लिए आज नई दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य एथलीट केंद्रीय संघों को सशक्त बनाना, सुरक्षित खेल नीति पेश करना और एक अपीलीय खेल न्यायाधिकरण की स्थापना करना है। सरकार ने दीपावली से पहले प्याज की मांग पूरी करने के लिए आज नासिक से दिल्ली के लिए कांदा एक्सप्रेस रेलगाड़ी रवाना की गई। उपभोक्ता कार्य सचिव निधि खरे ने बताया कि ये विशेष रेलगाड़ी 1600 मीट्रिक टन प्याज लेकर 20 अक्टूबर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। सचिव ने बताया कि जल्द ही और कांदा एक्सप्रेस रेलगाड़ियां लखनऊ, वाराणसी और पूर्वोत्तर के विभिन्न हिस्सों के लिए चलाई जाएंगी। आज महर्षि वाल्मीकि जयंती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। बेंगलुरु में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन ताजा समाचार मिलने तक न्यूजीलैंड ने 3 विकेट के नुकसान पर 168 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारतीय टीम पहली पारी में सिर्फ 46 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।